श्री साईराम, साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
श्री साई राम हरे, श्री साई राम हरे,
हुई थी, अर्थात भगवान राम मानव के रूप में आए थे। उन्होंने रावण का वध किया, अयोध्या का राजा बने। लेकिन आज भी हम भगवान राम के नाम को जपते हैं, उनको याद करते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं, रामायण पर टिप्पणियां लिखी जाती हैं, रामायण पर डिस्कशन होती हैं, डिबेट्स होती हैं, रिसर्च होती है, शोध होता है आदि आदि। कहा जाता है राम का नाम जपने से ही कुछ कारणवश हमारे भीतर पवित्रता के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान राम ने रावण को मारा। रावण कौन था? दशानन रावण, जिसके 10 सर थे, लंका का राजा था। पहली बात जरा आप विचार कीजिएगा, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कोई आदमी होगा जिसके 10 सर होंगे? कल्पना कीजिए जरा। मानव जो भी चीज बनाता है उसमें सुधार हो सकता है। मान लीजिए मानव ने कंप्यूटर्स बनाए, आज से 20 साल पहले जो कंप्यूटर थे वो आज नहीं है। कितना बदलाव आ गया। हर वर्ष आप नए मोबाइल फोन देखते हैं, कोई एप्पल का, कोई सैमसंग का या अन्य किसी कंपनी का, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, तरह तरह के टीवी सेट्स आते हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, कैमरास आते हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, यहां तक जिस तरह से हम मकान बनाते हैं उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, सही है ना। यूं कहिए कि जब से मानव उत्पन्न हुआ है तब से वह अपने लाइफस्टाइल में, रहने के तरीके में, जिन चीजों का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, उनके अंदर बदलाव आता गया, इंप्रूवमेंट आती गई है। दूसरी ओर आप चिड़िया को देखिएगा, आज से 10 साल पहले चिड़िया जिस प्रकार से घोंसला बनाती थी आज भी वैसे ही करती है। आज से 50 साल पहले चिड़िया जैसे घोंसला बनाती थी, तिनका तिनका उठाकर लाती थी, घोंसला बनाती थी, आज भी वही टेक्निक है, तकनीक में कोई बदलाव नहीं आया है। आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले भी चिड़िया उसी तकनीक से घोंसले को बनाती थी, प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि भगवान ने चिड़िया को सीमित बुद्धि दी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे खाना खोजना है, कैसे घोंसला बनाना है, कैसे बच्चों को पालना है, एक लिमिटेड नॉलेज है। सारे जानवर एक लिमिटेड नॉलेज लेके जीते हैं, एक लिमिटेड बुद्धि है, केवल मानव है जिसके अंदर बदलाव आ रहा है, ठीक है। लेकिन भगवान ने मानव को बनाया है, मानव के शरीर में बदलाव ऐसा नहीं आया होगा, शायद हो सकता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स मानव की हाइट में फर्क पड़ गया हो। लेकिन अगर ये बोले कि पहले इंसान था जिसके 10 सर होते थे, थोड़ा मानना कठिन लगता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। आज भी आपके सामने ऐसे बहुत लोग होंगे, आपके इर्द गिर्द, आपके भाई बंधु, आपके मित्र संबंधी, जो हो सकता है आपसे दुगना तिगुना इंटेलिजेंट हो। आप कहते वाह, आदमी को कितनी नॉलेज है यार, कितना ज्ञान है इसको। कोई कहता है आई एम एन इंजीनियर, कोई कहता है आई एम ए डॉक्टर, उसकी एक्सपर्टीज है मेडिकल साइंस, उसकी एक्सपर्टीज है इंजीनियरिंग, उसकी एक्सपर्टीज है कंप्यूटर साइंस, उसकी एक्सपर्टीज है मैथमेटिक्स, स्पेस साइंस, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। तो कई लोग ऐसे भी जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वो 8 घंटे में 16 घंटे का काम कर डालते हैं, वो 8 घंटे में 24 घंटे का काम कर डालते हैं, उनके काम करने की तीव्रता ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, इंटेलेक्ट लेवल बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग है, मेमोरी स्ट्रांग है, स्मरण शक्ति अच्छी है। अगर आज आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसकी 6 उंगलियां हो, आदमी तकलीफ में आ जाता है, सोचता ये क्या हो गया, मेरे बच्चे की 6 उंगलियां हैं, डॉक्टरों का चक्कर लगाता है, एक उंगली निकाल दो, एक बराबर नॉर्मल हैंड बना दीजिए, इसका नॉर्मल पाम हो, नॉर्मल हैंड हो, 5 उंगलियां हो। अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए उसके दो सर हों वो तो वायरल हो जाएगा भाई, सोशल मीडिया में जगह जगह पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह उसकी चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी, फोटोज जाएंगी, आप क्या बोलेंगे उसको, राम और श्याम, सीता गीता। अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो गया जिसके 10 सर हो तो लोग उसको रावण बुलाएंगे फिर तो, क्योंकि ये प्रचलित है रावण के 10 सर से। आप जानते हैं रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था, एक ऋषि का पुत्र था। मैं ये नहीं समझता कि उसके फिजिकल 10 सर होंगे, ये मेरा मानना है। भगवान ने मानव को पूरा ठीक से बनाया है, उसके मस्तिष्क में बदलाव आया है, विचारधारा में बदलाव आया है, इंप्रूवमेंट आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बायोलॉजिकली या फिजिकल इंप्रूवमेंट, जैसे कि एक जगह 2 साल हो 10 साल हो, वो थोड़ा मानना कठिन लगता है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं रावण ने 4 वेद 6 शास्त्रों का पढ़ा था, इतना ज्ञान था, इसलिए कहते थे दशानन 10 सर हैं जिसके, उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा याद कर लिया, इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि एक मानव नहीं कर सकता। यानी कि उसकी मेमोरी पावर या उसके ज्ञान की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो 10 लोगों के बराबर हो गई। बलवान था, हो सकता है बहुत ज्यादा बलवान रहा हो। कहते थे भीम के अंदर भी 1000 हाथियों का बल था, हो सकता है। आज भी आपके सामने बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, उनके मसल पावर बहुत होती है, ये हो सकता है। रावण बलवान था, शास्त्र कहते हैं, हो सकता है उनके अंदर 1000 हाथियों का बल हो, बहुत शक्ति हो। अस्त्रों की शक्ति हो, शस्त्रों की शक्ति हो। रावण गुड लुकिंग था, कहते जैसे ही है भाई, ही वॉज हैंडसम, लंबा चौड़ा, धनवान था, सोने की लंका, कैन यू इमेजिन, सोने की लंका थी या ना थी, रिगार्डलेस ऑफ दैट, शब्दों पर गौर कीजिए, सोने की लंका, ये शब्द बताते हैं कि बड़ा धनवान था भाई। आज भी हम कहते हैं कि भारतवर्ष में आज से 400-500 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतिहास इस बात का साक्षी है। हमारे महलों में, भारतवर्ष के महलों में सोना जड़ा होता था दीवारों पर। अगर 500 साल ऐसे पहले ऐसा हो सकता था तो आज से 1000 साल पहले क्यों नहीं हो सकता था? इट्स क्वाइट पॉसिबल, संभव है। उस जमाने में लंका की दीवारें सोने की हों, आज हम कहते हैं आपके घर में अलग से एक दीवार बनाई जाती है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, फीचर वॉल, यस फीचर वॉल, एक अलग दीवार अलग रंग की खड़ी कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता हो रावण के जमाने में फीचर वॉल्स हो, सोने की हो, या पूरा महल सोने का हो, संभव है। सोना जड़ा हुआ हो, हीरे मोती लगे हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन सारी बात यह बोलती है कि रावण अमीर था, रिच था, धनवान था, पैसे की कमी नहीं थी, धन संपत्ति की कमी नहीं थी भाई, राजा था वो। पहले ज्ञान में बहुत आगे, चार वेद छह शास्त्रों का ज्ञाता, बलवान, बहुत बलशाली, राक्षसों को, देवताओं को हरा दिया था, अनेक लोकों में जाकर हरा दिया था, नॉट ओनली इन दिस लोक, अनेक लोकों में जाके, दूर दूर तक उनका नाम प्रसिद्ध था। रावण को मारना आसान काम नहीं था, अस्त्र शस्त्र बहुत थे, बड़ी विद्याएं थी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, पुष्पक विमान था उनके पास। भाई आज भी हमारे पास वैसा विमान नहीं है युग में भी जो मन की गति से चलता हो। विमान में बैठते बोले उड़ो, उड़ पड़ता, मन में सोचते उड़ो, उड़ पड़ता, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, यहां जाओ वहां जाओ, मन की वाणी को सुनकर उस डायरेक्शन में चला जाता था। इट्स क्वाइट पॉसिबल, साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे हो सकता है। भाई आज भी साइंटिस्ट कई ऐसे टूल डेवलप कर रहे हैं कि एक आदमी बेचारा पैरालाइज है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, अपनी आंखों से केवल कंप्यूटर स्क्रीन में देख के आंखों को घुमाता है, वहां से मैसेज चला जाता है। ऐसे कई चीजें हो रही हैं। अगर आज हम ये कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं होगा, युग पहले तो हो सकता हुआ हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। हम तो ये कहते हैं हुआ होगा। रावण ने तपस्या करी, भाई भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, कहते हैं अपनी भुजाओं में हिमालय को उठा लिया। हिमालय को उठाया या नहीं उठाया, कहने का तात्पर्य है बड़ी कठिन तपस्या करी, घोर तपस्या करी, भगवान शंकर को प्रसन्न होकर उनके सामने आना ही पड़ा, वरदान दिए। लुक एट द क्वालिटीज, पहले ब्राह्मण वंश में जन्म, ब्राह्मण के वंश में जन्म हुआ, ऋषि के पुत्र। ब्राह्मण को हमेशा ऊंचा माना जाता है, माना जाता रहा है, क्योंकि वह ब्रह्म की विद्या जानते हैं, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, लोगों को उसको लेके जाते हैं, सपोज टू बी। रावण ने ज्ञान प्राप्त किया, बल प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, और आध्यात्मिक में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी भगवान को प्रसन्न कर लिया, और देखने में सुंदर। फिर भी एक साधारण से मानव जो नंगे पांव कुछ कपड़े पहने हुए वन में घूम रहा है, वनवास में है, उनकी स्त्री को उठा के ले गया। विचार कीजिएगा, रावण के मन में काम की वासना आ गई, उस स्त्री से विवाह करना चाहते थे, उस स्त्री से संबंध स्थापित करना चाहते थे। उन स्त्री का नाम तो आप जानते हैं, माता सीता। आज के युग में अगर इस किसी स्त्री को यह कहा जाए, भाई मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, और आदमी गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, हैंडसम है, हष्टपुष्ट है, धनवान है, राजा है, सोने के महल है, क्या नहीं है उसके पास, देवता भी थर थर कांपते हैं उनके आगे, भाई क्या वो स्त्री मना कर पाएगी? विचार कीजिएगा। लेकिन माता सीता ने कहा नहीं, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता, मैं विवाहित हूं, मेरे पति हैं श्री राम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामायण, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। दूसरी ओर राम चाहते तो दो विवाह कर लेते, तीन विवाह कर लेते, उनके अपने पिता महाराज दशरथ की तीन रानियां थी, लेकिन राम ने वचन दिया था कि मैं केवल एक स्त्री से विवाह करूंगा। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, दिस इज द ब्यूटी। रावण मर्यादा को लांग रहा था, रावण मर्यादा पे खड़े थे, बाउंड्री थी उनकी, सीमाएं थी उनकी कि किस हद तक इंसान को जाना चाहिए। रावण ने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, परिवर्तित नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं। आज के युग में हम क्या करते हैं, डिग्री पे डिग्री ले लेते हैं, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, बट दिस डिग्री इज गिवन टू योर मेमोरी पावर. पूरा साल आपने रट्टे मारे, सीखा, वो जाके कागज पे उड़ेल के आ गया, डिग्री मिल गई. हमारी डिग्री जो है ज्यादातर केवल पेट पालने के लिए पैसा कमाने का तरीका बताती हैं, जीवन को परिवर्तित करने का नहीं. नॉट टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ. नॉलेज विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज जीरो. लिटिल नॉलेज, वेरी लिटिल नॉलेज विद ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक यू जीरो. अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए. ज्ञान वो हो जो हमारे को ऊंचा उठाने वाला हो, परमात्मा तक ले जाने वाला हो. रावण के 10 सर कहा जाता है, 10 सर अर्थात 20 आंखें यूं समझा जाए तो. ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कह रहे हैं, 20 आंखें एक स्त्री पे फोकस थी, माता सीता के ऊपर. आंख में काम की भावना थी, उस काम ने हृदय का विनाश कर दिया. आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ा तो वाणी बिगड़ गई, और पूरा जीवन बिगड़ गया. हजारों वर्ष की तपस्या एक क्षण में क्षीण हो गई. जस्ट इमेजिन, हजारों वर्ष की तपस्या एक क्षण में क्षीण हो गई, समाप्त हो गई. एक साधारण से मानव ने, जो दो पैरों पर जमीन पर नंगे पांव चल रहा था, चाहे वे भगवान थे लेकिन मानव के रूप में थे, मानव थे, साधारण मानव थे प्रभु राम, उनके पास क्या था? धर्म की ताकत, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा की ताकत. धर्म का उदाहरण रखा कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए. The example of idealism, the ideal son, the ideal king, the ideal husband, the ideal citizen of the society. Ravan unse mara gaya. Ravan mar raha tha, Bhagwan Ram bole, Lakshman jao, Ravan se shiksha le lo. Lakshman bole, kya baat karte bhaiya, Ravan se shiksha le lo. जिन्होंने हमारी भाभी का, हमारी माता का अपहरण किया था, उस राक्षस का. भगवान राम बोले कि रावण के पास बहुत ज्ञान है. जब आदमी मर रहा होता है उस समय उसके सारे पाप धुल रहे होते हैं, वो सोच होता है मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया जीवन में, मेरा जीवन समाप्त होने का आया, मैंने अपना जीवन खराब कर डाला. इस समय वो अच्छी बातें करेगा, सच बोलेगा, उसका ज्ञान है. ज्ञान का जो जूस है, जो एसेंस है, वो मिल सकता है. जो रावण ने हजारों साल में पाया होगा वो आपको दो क्षण में बता देगा. कहते हैं लक्ष्मण जी रावण के पास गए, विद्या मांगी. रावण ने कहते हैं केवल 3 वाक्य बोले, देव प्रीति, पाप भीति, संग नीति. देव प्रीति का अर्थ है लव फॉर गॉड. लक्ष्मण को बोला हैव लव फॉर गॉड. भाई लक्ष्मण तो भगवान के साथ रह रहे थे, लेकिन मैसेज क्या हमारी, लव फॉर गॉड, डेवलप लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्रेम. लेकिन परमात्मा कहां पर है? परमात्मा मंदिर में मूर्तियों के बीच में नहीं है क्या? आप नहीं सोचते कि नेचर में परमात्मा है, प्रकृति में भगवान है? कभी विचार किया आज प्रकृति कितनी दूषित हो रही है, प्रदूषण से, पोल्यूशन से, प्लास्टिक से. हम अपने बीचेस को खराब करते हैं, धरती के अंदर प्लास्टिक गाड़ देते हैं, नदियों को खराब करते हैं, हवा को खराब करते हैं, अन्य शब्दों देखा जाए पांच तत्व अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु इन सब को हम खराब कर रहे हैं. जब ये पांच तत्व दूषित हो जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे? उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी सेहत खराब होगी, हमारी आयु में पड़ेगा, हमारे मस्तिष्क में पड़ेगा, हमारी विवेक शक्ति में पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों में पड़ेगा. इसलिए आज सब जगह चर्चा है कि सेव द नेचर, सेव अर्थ, सेव अर्थ, सेव अर्थ. भूमि को बचाओ, धरती को बचाओ, धरती माता की कदर करो, धरती माता को बचाओ. देव प्रीति, लव फॉर गॉड. लव फॉर गॉड का मतलब लव फॉर नेचर. लव फॉर गॉड करता है परमात्मा सबके अंदर वास करता है, सब जीव जंतुओं में. अगर समुद्र में जाके मछलियां मार देंगे उसका भी असर पड़ता है हमारे ऊपर. अब चूहों को मार देंगे उसका भी असर पड़ता है. सारे जीव जंतु जो भगवान ने बनाए हैं बैलेंस करके बनाए हुए हैं. इस विद्या को कहा जाता है इकोलॉजी मेरे ख्याल से. तो पाप भीति, फियर ऑफ सिन. ये नहीं कहा कि पुण्य करो, क्या पाप से बचो. अब पाप और पुण्य क्या है भाई? जो काम करने से किसी का हृदय दुखता हो, किसी को नुकसान पहुंचाते हो, वह पाप है. एज सिंपल एज दैट. वैसे तो आपके मन के अंदर से संयम की आवाज आ जाती है कि पाप काम कर रहे होगे तुम. रावण ने पाप कर्म किया, क्या हालत हो उसका? इतना धनवान, इतनी अच्छी पोजीशन में होने के बाद भी, इतना अमीर, इतना बलशाली, इतना वैभवशाली, इतना तंदुरुस्त, इतना हैंडसम राजा होने के बावजूद भी उसका क्या हाल हुआ? विचार कीजिएगा. फियर ऑफ सिन, पाप से बचो. पुण्य करो या ना करो डजंट मैटर, पाप से बचो. पाप नहीं होना चाहिए बस. आगे बोला संघ नीति, मोरालिटी इन सोसाइटी, समाज के अंदर नैतिकता. क्योंकि हम समाज में रहते हैं और आने वाले समय में भी हम समाज में रहेंगे. अगर हमारी सोसाइटी करप्ट हो जाए, सोसाइटी खराब हो जाए, सोसाइटी में वैल्यूज ना हो, ह्यूमन वैल्यूज ना हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे सत्यानाश हो जाएगा. टू मेंटेन द मोरालिटी इन सोसाइटी, देव प्रीति, पाप भीति, संघ नीति. विचार कीजिएगा. लव फॉर गॉड, समय निकालिए परमात्मा से प्रेम करने के लिए, समय निकालिए परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए, समय निकालिए नेचर को देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए, प्रकृति में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए. पेड़ हो, पौधे हो, चींटी हो, चिड़िया हो या मानव हो, सभी एक है. सभी के अंदर एक ही शक्ति वास करती है, एक ही आत्मा जिसका नाम है परमात्मा. द सेम डिविनिटी रिजाइड इन ईच एंड वन ऑफ ऑल. फियर ऑफ सिन, पाप से बचो. पहले मन में पाप आएगा, बाद में कर्मों में आएगा. मन में आते ही उसको निकाल दो कि कर्म में परिवर्तन ना हो जाए. संघ नीति, जब समाज में आप मोरालिटी लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फॉलो द मोरालिटी. इसको कहा गया प्योरिटी इन थॉट, वर्ड्स एंड डीज. मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्रता लेके आए, हारमोनी लेके आए, सामंजस्य लेके आए, तो हम परमात्मा से दूर नहीं है. दशहरे का अर्थ यही है, जो रावण को मारना है, जो हमारे भीतर है उसको मारना है, हमें राम बनने का प्रयास करना है. जय श्री साईं राम.